शुभ्र वस्त्र धारण किए उपेक्षा की मूर्ति दिव्या मारिस के अंतस्थल में समा गई। एक श्वास में दिव्या की रत्न प्रभा के आलिंद में दिखाई पड़ी निराश मूर्ति उसकी कल्पना की दृष्टि के सम्मुख उपस्थित होती और दूसरे श्वास में सागल में महापंडित धर्मत्स के प्रसाद में जीवन के उत्साह और आशा की नव विकसित मंजरी की भांति रूप सौरभ और स्फूर्ति को स्पंदन बरसाती दिव्या की मूर्ति उसकी कल्पना में जाग उठती। संवेदना में उसका हृदय पिघलकर अवश हो जाता, जैसे पिघल जाने पर मोम हाथ में सिमट नहीं रह सकता। सांगल में मारिस ने दिव्या के प्रति आकर्षण अनुभव किया था, परंतु वह आकर्षण कामना का नहीं केवल स्तुति का था। मारिस अपने असामर्थ और हीन स्थिति के प्रति वेसुद न था, वह दिव्या और स्वयं अपने बीच की गहरी खाई के व्यवधान से परिचित था, परंतु रत्न प्रभा के प्रसाद में दिव्या गर्व और गर्व के दुर्हर्ष शिखर से उतरकर समभूमि पर मारिस के हाथ की पहुंच में आ गई थी। मारिस संवेदना का हाथ बढ़ाकर उसे स्पर्श कर सकता था। संवेदना का आलंब पाकर मारिस का आकर्षण प्रबल हो गया। वह दिव्या को देख पाने और उसके समीप हो सकने के लिए व्याकुल हो उठा, परंतु अतीत के प्रसंग से दिव्या ने क्षोभ और व्यथा अनुभव की थी। मारिस अपने संतोष के लिए उसे व्यथित न करना चाहता था। उसके मन में सूल सा गड़ रहा था, क्या शेष जीवन दिव्या इसी प्रकार रहेगी? संध्या पर्यत विचार और दुविधा में उद्युग्न रहकर मारिस रत्न प्रभा के समाज में पहुंचा। रत्न प्रभा के समीप आसन से उठकर अंशुमाला ने गायन और नृत्य किया। उसका प्रसाधन सूरजपूर्ण और लावण्यमय था। उसकी ओठों पर और नेत्रों में संगीत के अनुकूल सजीवता और मुस्कान थी। मारिस एक ओर बैठा था, वह संगीत और नृत्य में तन्मय न हो सका। वह सोचता रहा, क्या इस कृत्रिम किल्लोलमयी अंशुमाला की अपेक्षा गत संध्या की अवसादपूर्ण शुभ्रवासना और आभारहीन दिव्या कहीं अधिक कामनी न थी? गत संध्या वह उसके मन का दुख प्रकट करने के लिए स्वतंत्र थी, इस समय वह विनोद का साधन बनने के लिए विवश है। रसिक समाज अपने नेत्रों से उसका लावण्य भोग रहा है, वह परवश होकर भोग के लिए उपस्थित है। समाज की स्थिति के उत्तर में अंशुमाला का सस्मित विनय उसे असहाय जान पड़ा। वह व्यग्र हो रहा था, कब समाज का अंत हो। नृत्य और गायन से श्रांत अंशुमाला अपने कक्ष में दासी वृंदा की सहायता से प्रसादन से निवृत्ति ले रही थी। द्वार रक्षक दासी मोरपंख का व्यंजन लेकर उसके स्वेद सिक्त शरीर को वतास द्वारा शीतल कर रही थी। वृंदा ने अंशु का कुच्छक खोल दिया और उसकी फैली हुई बाहु सहारे के लिए अपने कंधों पर रखकर बहुमूल संगत खोल रही थी। द्वार पर द्वार रक्षक दासी को न पाकर मारिस ने सूचना दिया। बिना सहसा कक्ष में आने से अंशु लज्जा और संकोच से सिमट और कांप कर बैठ गई। दासी ने समीप पड़ा उत्तरी उसके कंधों पर उड़ा दिया और उसके नेत्र अधमुदे थे और गालों पर अरुणाई गहरी हो गई थी। मारिस ठिठका और विमूढ़ ही गिरवा झुकाकर लौट गया। आलिंद तक पीछे लौट कर उसने सुना, आर्य स्वामी नमस्कार निवेदन करती हैं। मारिस विचार विमूढ़ सा कक्ष में लौट आया। अश्रु यथास्थान वस्त्र धारण कर चुकी थी। नृत्य के समय कुछ आभूषण उतार चुके थे और कुछ शरीर पर शेष थे। लाज संकोच और शिष्टाचार की मुस्कान से उसका मुख और नेत्र दीप्त हो रहे थे। करजोड़ मस्तक झुकाकर उसने निवेदन किया, आर्य पधारिए। उसके केसों से अभिमुक्त गुच्छ झूल रहे थे। मस्तक पर चंद्रिका तिलक और ओठों पर राग था। शंख के समान ग्रीवा का मादर्व मुक्तावलियों से घिरा कर अधिक उद्भासित हो रहा था। रक्त कौशे में पीठ पीछे खींच कर पूर्ण गोलार्ध बने उरेज बंधनों में आकर वगुरा खींचे अश्व की भांति और अधिक मुखर हो रहे थे। कट से नीचे धानी रंग का अत्यंत चिकना साटक वीणा के कुष्मांड की भांति नितंबों की ओट लेकर अधिक आकर्षक बनाए थे और श्रांति के कारण अस्पष्ट रूप से थिरकती पुष्ट लंबी तुम्बी के समान जंघाओं की आकृति उसमें से व्यक्त हो रही थी। कंचुक और साटक के मध्य अनावृत तित्रवाली अपनी स्वाभाविक कमनीयता से दोनों ओर रक्त की धानी कौशिया लजा रही थी। मारिस चित्त उद्विग्न हो जाने के कारण अंशु के शिष्टाचार का उत्तर उचित शालीनता से न दे सका। अंशु को मारिस के शिष्टाचार की निंदा न खली, गांभीर्य का आवरण उसके लिए उद्विग्न हो खाली था। पीठिका की ओर संकेत कर उसने अनुरोध किया, आर्य आसन ग्रहण करें। मारिस ने आसन ग्रहण किया, परंतु अभ्यर्थना की स्वीकृति में उत्तर न दे सका। अभ्यारण उतारती दासी की अपेक्षा कर मारिस के समीप होकर अंशुमाला ने पुनः प्रश्न किया, आर्य मन और शरीर स्वस्थ है? भद्रे मैं स्वस्थ हूँ, मेरे अकस्मात प्रवेश से भद्रों की असुविधा हुई। आत्मसंवरण की चेष्टा से स्वयं मारिस के मुख पर असुविधा के चिन्ह प्रकट हो रहे थे। मारिस की असुविधा का कंटक अश्रु के मन में अनुभव किया, असुविधा नहीं आर्य, दासी सेवा के लिए प्रस्तुत है। मारिस क्षणभर मौन रहकर अत्यंत गंभीर स्वर में बोला, आर्य, निवेदन की इच्छा अदमनीय हो जाने पर भी उपस्थित हुआ हूँ। अंशु का मस्तक ऐसे गूंज उठा जैसे मृदंग पर सहसा पूरी थाप आ पड़ी हो। विचार को संयत रखने के लिए दोनों हाथों की अंगुलियां परस्पर बांध कर उसने सोचा, स्वामिनी की अनुमति बिना किसी पुरुष का उसके अंत कक्ष में होना उचित नहीं, और कहा, आर्य कक्ष में उष्मा है, यदि असुविधा न हो उद्यान की मुक्ति वायु में बैठकर वार्तालाप करें। व्यंजनधारी दासी देवी के अंत कक्ष में अकस्मात एक पुरुष के प्रयोग से अस्तभ्य होकर अपने कर्तव्य भूल गई थी। संकेत पाकर वह तुरंत व्यंजन डुलाने लगी। उसकी ओर देख कर अंशु बोली, नहीं, व्यंजन की आवश्यकता नहीं, आर्य को मौलश्री के नीचे शिला पीठ का मार्ग दिखाओ। फिर उसने मारिस की ओर देखा, आर्य दासी तुरंत उपस्थित होगी। मौलश्री के नीचे शिला पीठ पर बैठे मारिस विचार रहा था, दिव्या से वह क्या और कैसे कहेगा। आवेश में वह उसके अंत कक्ष में चला गया। उस भूल की स्मृति ने आवेश के स्थान पर तर्क को उद्बोधित किया। सम्मुख दिव्या आती दिखाई दी, कला व्यवसाय के वस्त्राभूषण उतार कर अब फिर श्वेत वस्त्र धारण किए निराभरण थी। उसके मुख की मुस्कान भी विलीन हो चुकी थी। शिलापीठ पर मारिस के समीप बैठकर कुछ क्षण उसके प्रश्न की प्रतीक्षा कर वह स्वयं बोली, आर्य आज्ञा करें। अंशु की ओर दृष्टि उठा, मारिस ने प्रश्न किया, भद्रे क्या यह उचित है?